surgió Me.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते पर। और साथ हमारे आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। वाधवा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
वाधवा जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा कि हमने आज देखा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये एक बहुत ही लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे वहां के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं न्यूजीलैंड मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिस्टर टॉड मैकले, उन्होंने इसे वंस इन अ जेनरेशन काइंड ऑफ एफटीए की संज्ञा दी है। अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे आयाम इसके सामने निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग घटक हैं इसके, तो हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में इसे बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज जो चर्चा हुई, आज जो ये अग्रीमेंट साइन हुआ, उनमें क्या प्रमुख बिंदु हैं इसके अंदर।
भारत और न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता जो एफटीए है
जी,
जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं, इसकी चर्चा काफी सालों से चल रही थी, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा है कि इसमें वॉलेटाइल जो टॉक्स होती हैं उसमें बहुत तेजी आई है। और इसकी जो प्राथमिकता ये है कि ये द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा और निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये व्यापक रूपरेखा स्थापित करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक समझौता है और भारत की उन रणनीतियों के अनुरूप है जिसके तहत भारत अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता चाहता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना चाहता है।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो प्रोग्राम है विकसित भारत 2047 तक, उस दिशा में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कितना बल दे रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी देखा है कि और भी जो अन्य देश हैं, खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो कई सारी अटकलें बीच में लगी, कई सारे प्रॉब्लम्स बीच में आ रहे थे, तो अगर उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या संभावनाएं इसके साथ हम जोड़कर इसे देख सकते हैं।
देखिए, ये समझौता संरचित व्यापार उदारीकरण और जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक निवेश प्रतिबद्धताओं के माध्यम से आपसी विकास पर केंद्रित है और इसमें चार बहुत ही मुख्य बिंदु हैं। एक तो बाजार तक पहुंच है, जो भारत ने न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं के लिए पहुंच प्राप्त कर ली है और इसके बदले में भारत ने न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात, अगर हम मूल्य के आधार पर देखें, को कवर करते हुए अपनी लगभग 70% टैरिफ लाइनों को उदार बनाया है। दूसरा, निवेश प्रतिबद्धता की बात करें तो इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता है। इसे एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म को बोलते हैं, पुनर्संतुलन तंत्र का समर्थन प्राप्त है जो भारत को इन निवेश लक्ष्यों के पूरा न होने की स्थिति में एफटीए लाभों को निलंबित करने की अनुमति देता है। तीसरा, सेवाएं और गतिशीलता की बात करें तो ये समझौता भारत के लिए 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार की पहुंच को खोलता है, जिनमें आईटी है, वित्त है, शिक्षा है, पर्यटन है और निर्माण, ये सभी शामिल हैं। और इसमें 5,000 अस्थायी वर्क वीजा के साथ साथ वर्किंग हॉलिडे और पढ़ाई के बाद काम करने के विकल्प भी शामिल हैं। और चौथा जो इसमें मुख्य बिंदु है, यह क्षेत्रीय सहयोग, क्योंकि ये सौदा एमएसएमई के लिए संस्थागत जुड़ाव स्थापित करता है और कृषि, विशेष रूप से बागवानी को देखें, जैसे सेब और कीवी फल है, और जैविक प्राथमिक उत्पादकों में साझेदारी को बढ़ावा देता है। अगर हम इसको जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो भारत ने ईयू के साथ में बहुत बड़ा, बहुत ही अहम एफटीए उसको भारत ने एस्टैब्लिश किया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक्टा साइन हुआ था, फिर चार यूरोपियन देशों के साथ एक अलग बहुत बड़ा समझौता निवेश के साथ साथ हुआ था, और फिर ओमान न्यूजीलैंड के पहले वो अग्रीमेंट एक साइन हुई थी एफटीए की। तो हम इन सभी को अगर परिपक्ष में देखें, भारत अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता लाना चाहता है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो विकसित देश है उनके साथ में आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना चाहता है। न्यूजीलैंड एक विकसित देश है और इसकी सोसाइटी बहुत डेवलप्ड है।
जी वाधवा जी, अगर हम ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आज के अग्रीमेंट में ये निकल कर आया है, जैसे पीछे भी काफी इस पर चर्चा हुई है, एग्री सेक्टर की, अगर हम फार्मर्स की बात करें, रूरल इकोनॉमी की बात करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, तो जब हम अमेरिका के साथ जब बातचीत चल रही थी या यूरोपियन यूनियन की भी बात करें या अन्य विकसित देशों की भी बात करें तो यहां पे पेच अक्सर फंसता हुआ दिखता था। यहां पे बिल्कुल साफ ये बिंदु है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, रूरल इकोनॉमी है, उन्हें प्रोटेक्ट करके और बहुत अच्छे ढंग से इस अग्रीमेंट को एक शेप दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
इस एफटीए में कुछ संवेदनशील क्षेत्र है और उनको छूट दी गई है, क्योंकि बातचीत का एक मुख्य केंद्र भारत के संवेदनशील घरेलू उद्योगों को आयात के दबाव से सुरक्षित रखना था। तो अगर हम डेयरी और कृषि को देखें, जिसका आपने जिक्र किया
जी,
तो समझौते से लगभग 30% टैरिफ लाइनों को बाहर रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है, जिसका अर्थ है कि न्यूजीलैंड भारत में डेयरी उत्पादों का शुल्क मुक्त निर्यात नहीं कर सकता। और फिर एक बहिष्करण सूची भी है, तो शुल्क निर्यातों से बाहर रखी गई अन्य वस्तुओं में कुछ पशु उत्पाद हैं, कुछ विशिष्ट सब्जियां हैं, बादाम है, चीनी है, तेल है, मसाले हैं, धातु और रबर, ये सभी इसमें शामिल हैं। और जिस एफटीए की जब अनाउंसमेंट हुई थी कुछ महीने पहले, तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट में, उन्होंने ये कहा था कि इसमें भारत के लिए ज्यादा फायदा है और न्यूजीलैंड के लिए जो मेन इम्पोर्टेंस की चीजें थी उनको बाहर रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने भारत के बड़े मार्केट को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर अपनी सहमति दे दी है। और इस समझौते में कुछ वाणिज्यिक और विनिर्माण वस्तुएं हैं, तो उनकी कुछ बढ़ी हुई पहुंच जरूर होगी भारत में। अगर इसको हम ओवरऑल तरीके से देखें तो ये एफटीए भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा एफटीए साबित होगा।
आज के इस अग्रीमेंट में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एंगेजमेंट विद अ डेवलप्ड वर्ल्ड की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में ये 7वां अग्रीमेंट है और अगले कुछ महीनों में ही 2 बड़े अग्रीमेंट और होने की बड़ी संभावना है, जिसमें कि ईयू की बात उन्होंने की और अमरीका की बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
The signing of this FTA today marks another defining milestone in India's engagement with the developed world and brings us closer to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. With this FTA, it is the 7th free trade agreement that I am signing in the last 3.5 years. 2 more to go very soon in the next few months with the European Union and the United States of America, and we would have had 9 free trade agreements.
वाधवा जी, जैसा कि आपने भी सुना, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस 7वें अग्रीमेंट की बात की। पिछले 3.5 वर्षों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आज के तारीख में अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो इस तरह के एंगेजमेंट, इस तरह के आउटरीच उतने ही आवश्यक हो जाते हैं। ईयू के साथ हमारा एक अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यूएसए के साथ भी हम समझते हैं कि बात काफी आगे बढ़ रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बात अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की करें तो उनके साथ एंगेजमेंट करना उतना ही आवश्यक है आज की तारीख में।
बिल्कुल, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने अभी बताया, भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके साथ में जितने समझौते भारत कर सके उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास ही जो न्यूजीलैंड का जो एफटीए है इसमें जो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, तो इसलिए इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये जो निवेश है वो दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है उसने 118 सेवा क्षेत्र जो है उनमें आईटी और वित्त और शिक्षा, पर्यटन और निर्माण, ये सभी शामिल है। तो भारत को अपनी सर्विसेज के लिए न्यूजीलैंड की सोसाइटी में एक ओपनिंग मिलेगी और भारत को इससे बहुत सहूलतें मिलेंगी और हमारे जो वर्कफोर्स है उनको इसमें एक ओपनिंग मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ जो पारंपरिक बाजार हैं हमारे उनके ऊपर निर्भरता कम होती है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमारे जो संबंध है वो भी इस एफटीए से मजबूत होते हैं।
और आइए सुनते हैं कि न्यूजीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर टॉड मैकले ने इस अवसर पर क्या कहा।
This agreement is also being concluded at a time of heightened global and regional uncertainty. In this context, strong, reliable partnerships matter more than ever before. New Zealand sees India as an essential partner in supporting regional stability, economic resilience and shared prosperity. As ministers, we recognise the signing of this agreement is not the end of the process. In fact, it is a beginning. Its success will be measured by how well it is implemented, how effectively businesses and institutions make use of it. We look forward to continuing our close cooperation as we move into the next phase of implementation and of delivery.
आज इस FTA अग्रीमेंट को जो साइन किया गया है उस मौके पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पूरे मसौदे को लेकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आइए वो सुनते हैं.
द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वेरी फॉरवर्ड लुकिंग while it opens the doors for goods and services in a massive way, it also has an investment commitment which will encourage businesses to leverage the strengths and scale that India offers. It will also encourage Indian businesses to look at New Zealand market both for access in goods and services and potential investment. It'll, as Todd said, it could open up the doors for cultural exchanges, could open the door for education. It can expand our engagement on pharmaceuticals and the medical side. It can encourage new job creation, technology transfers, joint innovation projects. As Prime Minister Modi said, and I quote, the India-New Zealand Free Trade Agreement sets the stage for doubling the bilateral trade in the coming 5 years. Let's look at greater ambition together.
जी वाधवा जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को हमने सुना. किस तरह से इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड को लेकर के काफी डेवलपमेंट होने की संभावना है. उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही, स्टूडेंट मोबिलिटी की बात की, फार्मास्यूटिकल की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की. अक्सर देखा गया है कि ये तीन सेक्टर बहुत ज्यादा, खास करके जब हम भारी भरकम सेक्टर्स की बात करते हैं तो कहीं ये पीछे रह जाते हैं. कैसे देखते हैं आप इसको?
देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जहां तक एजुकेशन के संबंध है वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग संबंध रहे हैं. और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, क्योंकि इसमें 5,000 अस्थायी वर्क वीजा के साथ साथ वर्किंग हॉलिडे और पढ़ाई के बाद काम करने के विकल्प भी शामिल है, तो इसलिए न्यूजीलैंड का जो FTA है ये हमारे जो छात्र हैं जो वहाँ न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम समझौता होगा. और दूसरी बात यह है कि इसके चलते न्यूजीलैंड की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो देखेंगी कि भारत में अगर कैंपस खुल सके तो उनको इन्वाइट किया जाएगा यहाँ पर अपना कैंपस खोलने के लिए, क्योंकि ड्यूअल डिग्रीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के साथ स्टार्ट किए हैं उनकी सक्सेस रेट बहुत हाई है. और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 9 कैंपसेस भारत में खोलने का वायदा कर दिया है और अभी अभी डीकिन यूनिवर्सिटी जो है उसका पहला बैच वो ग्रेजुएट भी हो चुका है गिफ्ट सिटी से. तो ये सब एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड के सामने. और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, उसको देखते हुए न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज यहाँ पर जरूर सोचेंगी कि यहाँ कैंपस खोले जाएं. आपने मोबिलिटी की बात करी, मोबिलिटी भी बहुत ही अहम मुद्दा है. भारत जितने भी विकसित देश हैं उन सभी के साथ में आजकल FTA के साथ साथ मोबिलिटी के ऊपर भी जोर दे रहा है, क्योंकि अगर मोबिलिटी होगी तो भारत वर्कफोर्स है उसको FTA के थ्रू जो एडवांटेजेस मिलेंगे उनको लेने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको वर्क वीजा आसानी से मिल सके. तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में चलकर भारत और न्यूजीलैंड का जो FTA है ये काफी अहम साबित होगा और दोनों देशों के बीच में जो आदान प्रदान है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, वो सब बढ़ेंगे.
एम्बेसडर वाधवा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपने जो बिंदु रखे हमारे श्रोताओं के लिए उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद.
धन्यवाद
श्रोताओं. यह कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
सुर्खियों में